स्पेन का समुद्र फ्लोटिला का समर्थन इजराइल की गाजा के विनाश में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। लगभग 2 वर्षों से दुनिया ने उस चीज को देखा है जिसे आधुनिक इतिहास में नागरिक आबादी के खिलाफ सबसे व्यवस्थित और क्रूर विनाश अभियानों में से एक के रूप में व्यापक रूप से वर्णित किया गया है। गाजा 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों के साथ एक घनी आबादी वाला क्षेत्र अक्टूबर 2023 से लगभग पूर्ण घेराबंदी में है। इसकी बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है, पानी और बिजली तक इसकी पहुंच को सीमित कर दिया गया है और इसकी नागरिक आबादी को बार बार बमबारी, विस्थापन और भुखमरी का सामना करना पड़ा है। वैश्विक जनमत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्थान तेजी से इसे वे कह रहे हैं जो यह है नरसंहार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपनी 2024 के अंतरिम उपायों और बाद में अपने सलाहकारी राय में फैसला दिया कि इजराइल की नीतियां गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में नरसंहार कन्वेंशन, चौथे जेनेवा कन्वेंशन और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई लेखों का उल्लंघन करती हैं। आईसीजे ने यह भी निर्धारित किया कि इजराइल का फिलिस्तीनी क्षेत्र का कब्जा अवैध है और सदस्य राज्यों को इस अवैध स्थिति को मान्यता न देने और सहायता न करने का दायित्व है। फिर भी इन स्पष्ट कानूनी फैसलों के बावजूद इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को जारी रखा है। दशकों की कूटनीतिक छूट, संयुक्त राष्ट्र में वीटो की ढाल और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली पश्चिमी राज्यों के मजबूत समर्थन से प्रोत्साहित होकर परिणाम दुनिया काफी हद तक मूकदर्शक बनी रही क्योंकि गाजा को मलबे में बदल दिया गया। अब यह गणना बदलने वाली हो सकती है। एक स्कूल यार्ड का धमकाने वाला अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलता है। दशकों से इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक स्कूलयार्ड के धमकाने की तरह व्यवहार किया है। सीमाओं को धक्का देना, फैसले को अनदेखा करना और यह विश्वास रखते हुए तनाव बढ़ाना कि कोई भी इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस रुख को वाशिंगटन के साथ इसके गठबंधन, क्षेत्रीय सैन्य श्रेष्ठता और इसकी अघोषित परमाणु निवारक शक्ति ने मजबूत किया है। लेकिन इस रुख ने अहंकार को भी पोषित किया है, यह विश्वास कि कोई भी कार्य, चाहे वे कितना भी लापरवाह या अवैध क्यों न हो, एक समानुपातिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को ट्रिगर नहीं करेगा। इस साल की शुरुआत में इजराइल का कतरी राजनयिक हितों पर हमला करने का निर्णय व्यापक रूप से उसकी सबसे मूर्खतापूर्ण उकसावे में से एक माना गया। लेकिन अब जो मंडरा रहा है वह इससे भी आगे निकल सकता है। समुद्र फ्लोटिला पर संभावित इजरायली हमला, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे एक बहुराष्ट्रीय जहाजों का काफिला। भाग लेने वाले जहाजों में स्पैनिश ध्वज के तहत नौकायन करने वाले जहाज शामिल हैं जो स्पैनिश नागरिकों को ले जा रहे हैं, जिनमें निर्वाचित अधिकारी, सहायता कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं। यदि इजराइल इन जहाजों पर घातक बल के साथ हमला करता है तो यह घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू कर सकता है जो भू राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल देता है और संभवतः इजराइल को अपने इतिहास में पहली बार न केवल गाजा की घेराबंदी बल्कि वेस्ट बैंक के कब्जे को भी छोड़ने के लिए मजबूर करता है। कानूनी डोमिनो गिरना शुरू। चरण 1, नागरिक जहाज पर हमला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51। यदि इजरायली बल नागरिक विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर उच्च समुद्र में हमला करते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जल में, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन होगा जिसमें शामिल हैं अनक्लोज संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, समुद्र में सशस्त्र संघर्ष पर लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सैन रेमो मैनुअल। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 प्रदान करता है। इस चार्टर में कुछ भी व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के स्वाभाविक अधिकार को कमजोर नहीं करेगा यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है। यदि स्पेन यह निर्धारित करता है कि इजराइल का उसके जहाजों पर हमला एक सशस्त्र हमला है, विशेष रूप से यदि नागरिक मारे जाते हैं, तो वह अनुच्छेद 51 के तहत व्यक्तिगत आत्मरक्षा का आह्वान कर सकता है। इसके अलावा यह आह्वान सामूहिक आत्मरक्षा को आमंत्रित कर सकता है जहां अन्य राज्य स्वेच्छा से स्पेन की प्रतिक्रिया करने के अधिकार का समर्थन करते हैं। राष्ट्र जैसे तुर्की, नेटो सदस्य जिसके पास ऐतिहासिक शिकायतें और इजराइल के साथ क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इंडोनेशिया जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत गाजा में शांति सेना में शामिल होने की राजनीतिक इच्छा व्यक्त की है, यमन जो पहले से ही लाल सागर में इजरायली शिपिंग पर असममित नौसैनिक दबाव में लगा हुआ है, स्पेन के आत्मरक्षा के दावे का समर्थन करने की घोषणा कर सकते हैं। यह कानूनी गठबंधन ढांचा बनाता है सीमित नौसैनिक, हवाई और मानवीय संचालन के लिए सामूहिक आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की अनुपस्थिति में भी। चरण 2, सैन्य जहाज पर हमला, नेटो का अनुच्छेद 5। यदि स्थिति और बढ़ती है, उदाहरण के लिए यदि इजरायली बल स्पैनिश या तुर्की युद्धपोत पर हमला करते हैं, तो कानूनी और राजनीतिक गणना निर्णायक रूप से बदल जाती है। नीटो संधि के अनुच्छेद 5 के तहत अनुच्छेद 6 द्वारा परिभाषित संचालन क्षेत्र मेडिटेरेनियन सहित में एक सदस्य के बलों, जहाजों या विमानों पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। स्पेन और तुर्की तब अनुच्छेद 5 को औपचारिक रूप से लागू कर सकते हैं, जिससे एक सामूहिक प्रतिक्रिया तंत्र शुरू हो जाता है। हालांकि नीटो सर्वसम्मति से संचालित होता है और प्रत्येक सदस्य राज्य अपने योगदान में लचीलापन रखता है, अनुच्छेद 5 को लागू करना परामर्श और एकजुटता को बाध्य करता है। यहां तक कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी दोनों इजराइल के साथ गहराई से जुड़े हुए युद्ध से बचने का विकल्प चुनते हैं, तो उनके लिए अन्य नीटो सदस्यों को कार्रवाई करने से रोकना संभावना नहीं है, खासकर यूक्रेन पर गठबंधन एकता को बनाए रखने की निरंतर अनिवार्यता को देखते हुए। नौसैनिक एस्कॉर्ट से रणनीतिक वापसी तक। प्रतिक्रिया में नेटो के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन संभवतः स्पेन, फ्रांस, तुर्की और इटली पर केंद्रित और अन्य सहानुभूति रखने वाले राज्यों द्वारा समर्थित जल्दी से निम्नलिखित स्थापित कर सकता है। गाजा के लिए एक मानवीय समुद्री गलियारा। पूर्वी मेडिटेरेनियन जल के ऊपर हवाई और नौसैनिक रक्षा गश्त। खोज और बचाव और काफिले की सुरक्षा के लिए संयुक्त कमांड तंत्र। इजराइल की नौसेना और वायुसेना हालांकि परिष्कृत और क्षेत्रीय रूप से प्रभुत्वशाली समन्वित नेटो बल के साथ वास्तविक रूप से मुकाबला नहीं कर सकती, विशेष रूप से ऐसे नहीं जो अनुच्छेद 5 के तहत संचालित हो और सामूहिक आत्मरक्षा की राजनीतिक वैधता द्वारा समर्थित हो। ऐसे दबाव में इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, न केवल गाजा की घेराबंदी को उठाना बल्कि वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों या पूरे से वापस हटना। 2024 के आईसीजी के सलाहकारी राय के अनुरूप, जिसने स्पष्ट रूप से इजराइल की कब्जे को अवैध घोषित किया और सदस्य राज्यों को इसके समर्थन को समाप्त करने का आदेश दिया। परिणाम, शांति के लिए एकजुट के माध्यम से परिणाम को वैध बनाना। धूल जमने के बाद सामूहिक आत्मरक्षा में कार्य करने वाले देशों का वही गठबंधन सामान्य सभा में शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव ला सकता है, पूर्वव्यापी रूप से बहुराष्ट्रीय संचालन का समर्थन करना और फिलिस्तीन में गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को शामिल करते हुए एक औपचारिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को अधिकृत करना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, हालांकि नाजुक। इसके लिए नाकाबंदी को समाप्त करना, फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा करना, अवैध बस्तियों को हटाना और फिलिस्तीनी नागरिक समाज की टूटी हुई संस्थाओं का पुनर्निर्माण करना। मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण मोड़ और अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई गलती न करें, इसमें से कुछ भी गारंटीशुदा नहीं है। बढ़त, दलित अनुमान और प्रतिक्रिया के जोखिम वास्तविक हैं, लेकिन सुमुत फ्लोटिला संकट यदि इजराइल द्वारा गलत तरीके से संभाला गया तो यह एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है, न केवल क्षेत्र के शक्ति संतुलन में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग में भी। दशकों में पहली बार स्पेन जैसे राज्य यूरोपीय सहयोगियों, मुस्लिम बहुल भागीदारों और सार्वजनिक समर्थन की एक महत्वपूर्ण मात्रा द्वारा समर्थित इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो लाल रेखा चाहिए थी उसे खींच सकता है। यह इजराइल का विनाश नहीं होगा, लेकिन यह इजराइल की गाजा को बिना परिणाम के नष्ट करने की क्षमता का अंत हो सकता है, और शायद गाजा की राख से दुनिया अंततः एक ऐसा ढांचा बना सकती है जो भविष्य के नरसंहारों को न केवल अवैध बनाए बल्कि असंभव बनाए।